शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। विकराल विनाश खड़ा आगे
शांति। आज दिन तक सुनते आए कि मन को मारना है, लेकिन बाबा ने हम सभी को सिखाया कि मारना नहीं लेकिन जीतना है। कैसे अपनी संकल्प शक्ति पर मन पर जीत प्राप्त करे, उसकी बहुत ही सहज और सरल विधि आदरणीय मोहन भाई जी हम सभी के सामने रखेंगे। पहले हम सब एक हाथ की अव्यक्त ताली से भाई जी का स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। बचपन से ही आप बाबा के हैं और अनेक स्थानों पर समग्र भारत देश के अंदर अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवाओं की स्थापना कराने के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया। ONGC के अंदर आप बहुत ही ऊंची पोस्ट पर थे। जहां जहां भी जिस जिस शहर में आपकी ट्रांसफर होती गई साकार बाबा के समय, उन हर स्थानों के ऊपर आपने बाबा के नए नए सेंटर खोले ईश्वरीय सेवाएं की। तो ऐसे बाबा के सर्विसेबल रतन आज हम सभी के सामने हैं। आपकी एक पहचान शायद आप सभी को भाई बहनों को नहीं होगी। 18 जनवरी 1969 रात्रि के समय जब बाबा ने अपना विनाशी देह त्याग किया, लास्ट मुरली हिस्ट्री हॉल में चलाई, उस समय आप बाबा के सामने थे। और आपने अगर वो 18 जनवरी की लास्ट मुरली सुनी हो तो उसमें अंत में मोहन भाई का नाम भी बाबा ने लिया है। तो ऐसे विशेष रत्न आज हम सभी के बीच में हैं। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपको पर्यावरण की सेवाओं के लिए सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो ऐसे बाबा के अनन्य रत्न के मुख से हम सभी सुनेंगे। आज का विषय है मन जीते जगत जीत। आदरणीय मोहन भाई जी।
ओम शांति। एक बार हमारे साथ मिल करके हम सब लोग ओम उस रीति से उच्चारण करेंगे जैसा यज्ञ में शुरू में साकार बाबा उच्चारण किया करते थे और सभी बच्चे अंदर गहरी सांस लेकर और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हम लोग ओम शांति का उच्चारण करेंगे। ओ शांति का यह महामंत्र ही वास्तव में मन पर विजय प्राप्त करने का एक बहुत सहज साधन है, विधि है, युक्ति है। और हर चीज शुरू होती है स्वयं से, जैसा आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा, मुरली शुरुआत किस शब्द से की, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका क्या भाव समझते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात हमारा होम कौन सा है, आत्मा का होम शरीर है। और मन के अंदर जो भी भाव होते हैं वो हमारी कर्मेंद्रियों से रिफ्लेक्ट होते हैं। मन के अंदर क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, वो बाहर देखने में नहीं आता, लेकिन मन में क्या चल रहा है वो हमारा इन कर्मेंद्रियों से रिफ्लेक्ट होता है। मन में मानो क्रोध की भावना आई, आंख भी लाल लाल हो जाएंगी और बड़े हो जाएंगे, शरीर भी कांपने लगेगा। प्यार की भावना होगी, वात्सल्य की भावना होगी, वैसा ही रस आंखों में छलक आएगा। इसी प्रकार से मुख के द्वारा, कानों के द्वारा, हाथों के द्वारा जितनी हमारी कर्मेंद्रियां हैं उन सब के द्वारा ही मन के भाव रिफ्लेक्ट होते हैं। इसीलिए एक एक बाबा की मुरली को अगर देखेंगे समझेंगे, कुछ दिन पहले ही बाबा ने मुरली में क्या बताया था, सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी कर्मेंद्रिय है, आंख। तो आंख से जो भाव रिफ्लेक्ट होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि सफलता की जीवन की अंतिम स्टेज भी, कल की मुरली थी ना अव्यक्त मुरली 29 तारीख की, उसमें क्या बाबा ने बताया, जो सफलता का भी एक चिन्ह है ना, कौन सा चिन्ह, साक्षी दृष्टा। तो इस साक्षी दृष्टा शब्द में बहुत गुह्यता समाई हुई है। दृष्टा कौन है, देखो एक दृष्टा आत्मा दृष्टा है, और ये आंखें जो हैं दृष्टि है, खिड़की है आंख की। तो दृष्टा जो है इस खिड़की दृष्टि के द्वारा बाहर का दृश्य देख रही है। तो एक हुई दृष्टा, एक दृष्टि, एक बाहर के दृश्य। और जो इस स्थिति में स्थित होता है उसका ही इतिहास में दृष्टांत बनता है। तो हम सभी इतिहास में अपना दृष्टांत बनाने वाले हैं, हम सभी लोग इतिहास ही तो लिख रहे हैं। तो इसीलिए इस सब के लिए कि हमारी स्थिति सदा साक्षी दृष्टा रहे और इस स्थिति में हम स्थित होके कार्य व्यवहार करें, बाहर के दृश्य देखें, उनसे संपर्क करें, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड। तो जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसा ही हम उस दृश्य को देखेंगे। एक चीज होती है, जैसा व्यक्ति होता है, जैसा दृष्टिकोण होता है, उस चीज को वो वैसा ही देखता है। अच्छा व्यक्ति होगा उसे सब में अच्छा ही दिखाई देगी। बहुत दृष्टिकोण, बहुत उदाहरण ऐसे हैं। इसीलिए हम साक्षी दृष्टा होके सदा चलते रहें, एक ये कर्मेंद्री, क्योंकि मन का रिफ्लेक्शन इन कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है, मन में क्या संकल्प। तो यदि हम मन जीत रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उदाहरण तो होना चाहिए ना, हर चीज का कुछ ना कुछ लिविंग एग्जाम्पल होना चाहिए। मानो मेरे शरीर में बुखार है, अब तबीयत खराब है, अब थर्मामीटर से देख लेंगे तो पता चल जाएगा भाई इतना 96 से इतना ज्यादा है यानी फीवर है। शरीर में रेस्टलेसनेस है, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से देख लेंगे, उससे रिफ्लेक्शन हो जाएगा कि हाँ तबीयत में क्या खराबी है। ऐसे ही मैं मन जीतता जा रहा हूं, उसके कुछ ना कुछ तो लिविंग उदाहरण होने चाहिए ना, जिससे हम जानते जाएं कि हाँ मैं मन को जीतता जा रहा हूं। बड़ा अच्छा, किसी ने भी कहा भी है, सुना भी होगा ना आपने कि गीता में भी कहा है स्थिति, योगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, एक रस, और उसे क्या बोलते हैं, मतलब जो जैसी स्थिति हो, हार जीत मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख हानि लाभ सब में योगी की स्थिति समान रहे। और इसीलिए किसी कवि ने भी दो शब्दों में कहा है, सुना होगा ना, कि हरेक को खुशी अच्छी लगती है, बाबा भी कहता है हर परिस्थिति में खुश रहो मुस्कुराते रहो, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, सुना होगा ना, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में ऐसी स्थिति हो कि जीतने पर तो दुनिया भी अज्ञानी भी खुश होते हैं, विजिबली हमें हार लगे लेकिन उस स्थिति में भी मन की स्थिति हमारी डावाडोल ना। और इन सब के लिए जो मन जीते जगत जीत के लिए कौन ऐसा लिविंग उदाहरण है जिसको कि हम फॉलो कर सके, कोई लिविंग एग्जाम्पल होता है ना, लिविंग हो साकार में जिसका देखा हुआ हो, कौन है ऐसा उदाहरण, ब्रह्मा बाबा। मुझे भी बाबा के साथ रहने का काफी मौका मिला, लगभग 6-7 साल 1961-62 में जब ज्ञान में आए, और 62 से 69 तक कई बार बाबा से मिलने का, लेन देन करने का बहुत मौका मिला। लेकिन जैसा बहन जी बता रहे थे, बाबा की ये स्थिति का अनुभव हमने कई बार तो किया, लेकिन जो 17 और 18 जनवरी को किया, हम 17 जनवरी की सुबह यहाँ ड्रामा प्लान अनुसार आ गए, और 2 दिन में बाबा की स्थिति जो देखने का मिला मौका, मन जीते जगत जीत की स्थिति। कैसे, पहले हम लोग जब भी मिला करते थे ना बाबा से, तो बाबा बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे हाथ फैला देते, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, बाबा का चित्र बाहर लगाए देखा है ना आपने, तो वो प्रैक्टिकल है, और बस बाबा की दृष्टि पड़ते ही विदेही हो जाते, अशरीरी हो जाते। ये ताकत बाबा में थी, और इस कारण से जो भी आता था उसके संकल्प बिल्कुल स्टॉप हो जाते थे, अशरीरी हो जाता था वो, थोड़े समय के लिए सही। देखो जब तक वो शक्ति होती है, मानो ये रुमाल है, अब इस रुमाल को मैं फेंक रहा हूं ऊपर, तो ये तब तक ऊपर जा रहा है जब तक हमारी ये शक्ति फेंकने की ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है ना, लेकिन जब ये शक्ति बराबर हो जाती है, वो सेकंड के लिए रुकता है वहां, फिर उसके बाद नीचे आना लगता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, फिर खींचता है। तो बाबा भी थोड़े समय के लिए ही सही, क्योंकि थोड़े ही समय के लिए एक व्यक्ति बाबा की बाह में रह सकता था, तो बाबा ने दृष्टि दी, अशरीरी हो जाता था। फिर क्या करते थे बाबा, फिर बाबा थपथपाते, हाँ बच्चे, हाँ नीचे आओ बच्चे, मतलब कोई आत्मा जाती नहीं है निकल के, लेकिन मन जैसे कि ना बिल्कुल संकल्प मुक्त हो जाता है, और उसके बाद फिर व्यक्ति अपने को शरीर में अनुभव करता था, और उसके बाद बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, एक जाता था दूसरा आता था। तो ये हमारा भी होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को दृष्टि दें, जिन व्यक्तियों के संपर्क में आए, तो ये योग का प्रयोग हमारी, हम अपने को इतना स्टिल कर ले संकल्पों में कि जिस व्यक्ति को भी दृष्टि दे, जिससे भी बात करे, कम से कम वो थोड़े समय के लिए ना बिल्कुल संकल्प मुक्त हो जाए। तो ये धीरे धीरे बाबा ने स्टेज बनाई। और पहले जब मिलते थे बाबा कहते थे, हाँ बच्चे कहाँ से आए हो, हालचाल पूछते थे, क्या करते हो, और फिर अगर कोई प्रश्न पूछता था बाबा उसका उत्तर देते थे। लेकिन 17-18 जनवरी को हमने क्या देखा, क्योंकि यहाँ हम और हमारे लौकिक पिताजी हम दोनों ही थे, बाकी कोई पार्टी नहीं थी, तो बाबा से 5-6 बार मिलने का मौका मिला उन 2 दिन में। तो हम यही, हम आसाम में पोस्टेड थे, आसाम से यहाँ आ गए थे इंजीनियरिंग के बाद, पहली पोस्टिंग हमारी आसाम में हुई, बहुत दूर, लेकिन बाबा के बुलावे पर यहाँ 2 दिन पहले पहुंच गए। तो बाबा उन 2 दिनों में मैंने क्या देखा कि मन जीते जगत जीत का उदाहरण लिविंग, बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे, बाबा ये सर्विस है इसमें ऐसा करें या क्या, या ये पेपर आते हैं, एक कई बार अलग अलग बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा यूं दृष्टि देते थे, थोड़ी दृष्टि दी 5-10 सेकंड, फिर बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन में क्या भाव चल रहा है वो बाबा तक पहुंच जाता था। और ये उस तक ही पहुंच सकता है जिसने अपने मन को जीता होगा, नहीं तो अगर अपने मन में भी कोई संकल्प होगा और दूसरे के संकल्प के साथ तो वो मिक्स हो जाएगा, फिर हम दूसरे के भावों को पढ़ नहीं सकेंगे। तो एक तो बाबा का ये देखा, और एक बार नहीं, लगभग 5-6 बार 2 दिन के अंदर, बस मन जीते जगत जीत का लिविंग एग्जाम्पल। और इसका भी प्रत्यक्ष उदाहरण और क्या देखा, जैसा बहन जी बता रहे थे 18 जनवरी की रात को क्लास हो रही थी, और हम क्लास में, हम भी सामने बैठे हुए थे, बाबा की मुरली सुन रहे थे। तो बाबा तो अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुका था, तो बैठे बैठे हमारे मन में संकल्प आया। अब उसका भाव बताते हैं, जो बहन जी ने कहा बाबा ने नाम लिया, कैसे हमारे मन में संकल्प आया, बाबा कुछ हमारे लिए बोले। अभी भी अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना, तो आप लोगों के मन में भी होता है ना, अगर स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, बाबा से दृष्टि मिल जाए, बाबा से टोली मिल जाए, कितना अच्छा होगा। और हिस्ट्री हॉल में तो सम्मुख ही बाबा के, इतनी दूर पर ही बैठ के मुरली सुनते थे, बस बाबा मुरली चलाते थे, और मुरली चलाते चलाते जैसे ही हमारे मन में ये संकल्प आया बाबा कुछ बोले, अब वो तो कर्मातीत अवस्था थी, मन जीते जगत जीत की स्थिति, तुरंत ही जैसे बाबा ने कैच किया होगा, और तुरंत ही हमारा नाम लेके कुछ बहुत ऐसे महावाक्य उच्चार दिए जो हमारे जीवन के लिए हमेशा के लिए ही गाइडलाइन बन गए। तो मन में जरा सा संकल्प हुआ, भक्ति मार्ग में तो सुनते थे कि भक्त के मन में इच्छा हुई, भगवान ने को मतलब ने दर्शन दिया, साक्षात्कार भक्त से पूछा, बोलो क्या चाहिए, यानी भक्त ने अपनी बात बताई, भगवान के मुंह से क्या निकलता था, बस एक ही अक्षर तथास्तु, और अंतर ध्यान हो जाते थे, और फिर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। हम सब भी तो द्वापर युग से तो भक्ति रहे ना, जो कल भी मुरली में बाबा ने बोला, द्वापर युग के भक्त और सतयुग त्रेता के बाबा के राजाई परिवार के अधिकारी आत्माएं हैं। तो इस कारण से हमारे मन के अंदर जो संकल्प चलता है, तो ये एक तो ये निशानी, जो हम भी समय समय पर योग का प्रयोग जरूर करना चाहिए, पहले अपने ऊपर भी करें और आत्माओं के ऊपर, इसके जैसी परिस्थितियां आती हैं उनके ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर, अनेक योग के प्रयोग करें, और जैसे ही सफलता पता चलती जाती है तो बहुत बहुत खुशी होती है, क्योंकि योग का कोई भी चीज में सफलता में इसीलिए मन जीते जगत जीत, जीत शब्द ही खुशी का प्रतीक है, उमंग उल्लास का प्रतीक है। एक तो ये बाबा की प्रत्यक्ष स्थिति देखी, दूसरा जब हमारी ये स्थिति होगी, ये सारी स्थितियां लगभग जब हम कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे तो तब तो लगातार कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसका आभास हमें सबको अभी से ही होना चाहिए। हमें तो बहुत बार कई घटनाओं का आभास होता है, जैसे बाबा को भी हुआ, 18 जनवरी को बाबा ने कहा यीशु दादी को बुला के, बच्ची आज जितने भी पत्र हो लिखवा लो, कोई भी पत्र उस समय ईमेल या इंटरनेट ये तो होता नहीं था, तो पत्र ही बाबा के पास इतने आते थे, हम तो देखते थे लगभग इतना बड़ा थैला था बोरी जैसा, वो भर के रोज बाबा पत्र लिखते थे और सब पूरे हिंदुस्तान में जाते थे और पत्रों के जवाब बच्चे देते थे और वेट करते थे कब बाबा का गोल्डन हस्तलिखित पत्र आए। तो उस दिन बाबा ने यीशु दादी को बोला, बच्ची आज जितने भी पत्र लिखवाने हो लिखाओ, कोई भी पेंडिंग वर्क ना रह जाए। और सबको भी बोल दिया पेंडिंग वर्क, जो नक्की लेक का म्यूजियम है ना, वो बिल्डिंग लेनी थी, कई दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, बाबा ने उस दिन भी उस फाइल पर दस्तखत करे, उसे ले लो और वहां पर सेवा स्थान बनाओ। इस तरीके से कोई भी काम बाबा ने छोड़ा नहीं, जो पेंडिंग वर्क थे वो सारे के सारे किया। क्यों? क्योंकि बाबा को आभास, कर्मातीत अवस्था में जब आत्मा पहुंच जाती है तो उसे आभास हो जाता है कि बस मेरा इस शरीर से अब पार्ट पूरा हुआ और अब मैं गया कि गया। इसीलिए उस दिन रोज मुरली क्लास मधुबन में होती है रात्रि को 9:45 बजे, उसके बाद 9 बजे तक बाबा आते थे 9 से 10, लेकिन उस दिन बाबा ने वो क्लास प्रीपोन्ड करा दी, पहले ही बोला भाई आज क्लास ना 7 बजे होगी, भाई को बुला के, जमुना प्रसाद भाई हैं, उनको कहा कि भाई सबको बता दो आज बाबा क्लास जल्दी लेगा। सबने खाना वाना खा के और सब 7 बजे पहुंच गए और बाबा भी 7:30 के अंदर आ गए। देखो, क्योंकि आत्मा को पहले से आभास हो रहा था कि बस अब मैं संपूर्ण आत्मा स्थिति को आत्मा प्राप्त कर चुकी है। और क्या, बाबा उस दिन और क्लास में आए। बस बाबा वैसे जब भी क्लास कराते थे तो अब उम्र भी थी 93 ईयर्स बाबा की, कई बार खांसी भी बाबा को आती थी, तो जब खांसी आती थी तो बाबा क्या करते थे, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है हमारे ऊपर, शरीर की हो, संबंधों की हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन की हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसे हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है, उसका लिविंग एग्जाम्पल बाबा। बस खांसी आती थी, कई बार बाबा को ऐसा हमें लोगों को लगता था, देखने वालों को बाबा की आंखें जैसे गीली हो रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है जैसे बाबा को, खांसते थे, लेकिन बाबा क्या करता था ऐसी परिस्थिति में, बाबा के बगल में ही ना हिस्ट्री हॉल है, वहां ट्रांसलाइट का चित्र कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का रहता था, तो बस थोड़ा ही जब बाबा को खांसी आके रुकती थी थोड़ी सी, तो बाबा कहते, देखो बच्चे अभी तो ये शरीर भी पुराना है, ये 5 तत्व भी पुराने हैं, सारा वातावरण कलयुगी दुनिया का, अभी तो कल हम सब ऐसी दुनिया में जाएंगे, बाबा ऐसा मिशन कृष्ण बनेगा और कितना सुखदाई दुनिया होगी, और बस बच्चों को क्या करना चाहिए, खुशी में नाचना चाहिए, और शब्द क्या बोलते थे, खग्गिया मारनी चाहिए, है ना, ये सिंधी शब्द है। तो बाबा ने कई बार हम लोगों ने देखा बाबा ऐसे करके, वो वाह बच्चे वाह, ऐसा अंदर में नशा हो, ऐसी परिस्थिति कोई भी आए लेकिन अपनी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो कि वो परिस्थिति भाग जाए, उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त हो जाए। तो ये खांसी रूपी परिस्थिति प्रत्यक्ष हम लोग देखते थे, इतना हमें लोगों को तकलीफ होती थी देखते हुए, लेकिन बस कुछ क्षणों में ही बाबा उस अपनी मजबूत स्वस्थिति से उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर, स्वस्थिति मजबूत कहां से होगी? पहले मन मजबूत होना चाहिए ना। ये मन जीते जगत जीत का और लिविंग एग्जाम्पल है। कभी भी हमारे सामने कोई लौकिक परिस्थिति हो, किसी भी देह की परिस्थिति हो, बीमारी की स्थिति हो, कोई संबंधों की कोई भी हो, हम पहले नीचे गहरे उतर जाए अंदर की तरह। क्योंकि वैसे लौकिक में भी कहते हैं ना कि कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं और उसका इलाज क्या है, अंदर में अगर हम उतर जाते हैं मन में, क्योंकि न्यूक्लियस वो ही है। बाहर हम जब हल ढूंढते हैं ना तो थोड़े समय के लिए जैसे कि हम बाबा को भूल जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा हो, हम बाबा को कन्वे कर दें वो परिस्थिति, बाबा ये परिस्थिति है आपको संभालनी है बस। हाँ, उसके लिए ऐसा नहीं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, पुरुषार्थ करें जो भी लौकिक स्थिति के हिसाब से होता है, लेकिन उसमें हलचल में ना आए। फिर देखो बाबा बंधा हुआ है हमें उस परिस्थिति से निकालने के लिए, बस हमारा ऐसा हो, स्थिति ऐसी हो बाबा के सम्मुख। बाबा की देखी ना ये स्थिति, और क्या देखा बाबा का? देखा कि बाबा ने बताया भी है मोस्टली कि अभी बच्चों के सामने दो प्रकार के पेपर विशेष आएंगे वर्तमान समय। कौन से दो प्रकार के पेपर है? बाबा ने कई बताया, एक है दैवी परिवार का पेपर। परिवार तो बहुत बढ़ गया बाबा का, बहुत पुराने बच्चे भी हैं, नए बच्चे भी हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए हरेक का पुरुषार्थ अलग अलग। तो कोई मानो नया बच्चा देखेगा अच्छा पुरुषार्थी है, देखेगा अरे पुराने ये 40 साल पुराने, इनमें भी ये क्रोध, इनमें भी ये अभी ऐसी स्थिति बाहर की परिस्थिति में इतने हलचल में आ गए। तो वो जब जब जितना जितना ऐसा देखेगा और परिवार के प्रति उसके मन के अंदर ना मन को डावाडोल करने की स्थिति पैदा हो, ये पेपर बहुत आएंगे। क्योंकि पुराने पुराने हैं लेकिन अगर उनका पद साधारण प्रजा का है, यहाँ पुरुषार्थ भी उनका बहुत साधारण होगा, उनसे कभी गलतियां होती रहेंगी, भूल होती रहेंगी, और इस कारण से उनको कोई अच्छा पुरुषार्थी नया भी अगर देख लेगा वो उसे उस स्थिति में रीड करेगा। इसीलिए बाबा ने कहा है जब ये पेपर बहुत आएगा, यज्ञ हलचल में होगा, ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में पहली बात तो बाबा ने कही कि बच्चों को त्रिकालदर्शी की दृष्टि से उस आत्मा को देखना चाहिए, तीनों कालों की दृष्टि से, केवल वर्तमान में नहीं कि अभी स्थिति हलचल में है, नहीं, ये वही आत्मा है जो भगवान की चुनी हुई आत्मा, त्रिकालदर्शी की। और साथ साथ बाबा ने एक बात और बताई है कि यहां का मेरा साधारण से साधारण बच्चा भी है, लास्ट भी है, लेकिन वो आज के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी ऊंच है, महान आत्मा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है, हमने भगवान को नहीं पाया, भगवान ने ढूंढ ढूंढ कर हमें चुनकर यहां लाया है। इस नशे में रहेंगे ना तो कभी भी किसी आत्मा की कमी कमजोरी नहीं होगी और उस पेपर में हम सहज पार हो जाएंगे, किसी की भी स्थिति हमारी स्थिति को डावाडोल नहीं कर सकती। क्योंकि ये परिवार जितना बढ़ेगा उतना उतना ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे। एक तो ये परिवार का पेपर सबके सामने आएगा, हर एक को हम त्रिकालदर्शी होकर देखें, केवल वर्तमान काल की दृष्टि से नहीं। और दूसरा अपने शरीर का पेपर, क्योंकि जितने भी रहे सहे हिसाब किताब है ना वो इस शरीर से ही चुकत हूं। कोई ये ना सोचे मैं तो जवान हूं, अभी कम आयु का हूं, मुझे क्या होगा, बीमार होगा। लेकिन आत्मा तो वही 84 जन्म लेके इस अंतिम जन्म में आई है, तो न चाहते हुए भी ऐसी ऐसे बीमारियां, ऐसे रोग, ऐसे परिस्थितियां पैदा होंगी और वो क्योंकि शरीर हमारा सबसे निकट का साथी है, तो शरीर में जो भी व्याधि होगी उन सबसे घबराए नहीं, उसके लिए क्या है साधन पार होने का, पास होने का। बाबा ने जो देखा हमने, बाबा को एक अभ्यास बहुत पक्का था, कौन सा अभ्यास, एक सेकंड में शरीर में आना, एक सेकंड में शरीर से न्यारे हो जाना। मानो पार्टी को मिलने का टाइम दिया होता था, 10 बजे बंबई पार्टी, 10:30 बजे दिल्ली पार्टी, 11 बजे अहमदाबाद पार्टी, लाइक दैट। तो ब्राह्मणी आती थी बाबा के पास, बाबा इन 3 स्थानों में अक्सर करके मिला करते थे। कौन सा, एक तो बाबा का कमरा, तो जो अभी कमरा है वो इतना बड़ा नहीं था, सुना होगा ना, बहुत छोटा, जितना जहां तक पलंग पड़ा हुआ था उतना ही वो कमरा था, और भी उसे चौड़ाई में बढ़ाया है। एक तरफ बाबा की गद्दी पड़ी रहती थी, बीच में एक टेबल चेयर और एक साइड में पलंग, बस इतना छोटा सा कमरा बाबा का होता था। तो कम अगर होते थे, 2-3-4 लोग होते थे, 2-3 तो बाबा के कमरे में मिल लेते थे, और कुछ ज्यादा 8-10 हुए तो झोपड़ी में मिल लेते थे, और कोई बड़ी पार्टी, कोई मानो 12-15 की पार्टी है, उस समय तो यही पार्टी बहुत बड़ी मानी जाती थी, 60s की बात है, तो वो हिस्ट्री हॉल में मिला करते। तो बस बाबा जैसे बैठे हैं, ब्राह्मणी आई भी सामने, बस देख रही है बाबा को, जैसे आंख खुली है लेकिन मन से जैसे कहीं और है। ब्राह्मणी कहती थी, बाबा बाबा फलानी पार्टी को मैं लाई हूं। बाबा तो बाबा को कभी जैसे ना, अब ध्यान में नहीं होते थे, साक्षात्कार नहीं, दिव्य दृष्टि नहीं, लेकिन जैसे देह से परे स्थिति, उस स्थिति में बाबा, अच्छा बच्ची वो पार्टी लेके आई हो, ले आओ ले आओ। बाबा के पास आते थे, एक एक करके बाबा से मिलते थे, बाबा की गोदी में जाते थे, बाबा के हाथ से टोली खाते थे, हालचाल पूछते थे बाबा, वो बताते थे, फिर 1 by 1 एक के बाद एक जाते। तो ये जो स्थिति है, और फिर मानो 20 मिनट में पार्टी मिल गई, 10 मिनट और है दूसरी पार्टी के आने के लिए, फिर बाबा देह से परे हो जाते। तो जब चाहे हम देह में आए, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, ये बाबा का लिविंग एग्जाम्पल था, और इस कारण से बाबा बिल्कुल जैसे न्यारा और प्यारा लगता था, शरीर से भी न्यारा, बस चल भी रहे हैं, बाबा देख भी रहे हैं, देखते देखते जैसे कुछ दिन पहले आया था ना ब्रकुटी के बीच में, जैसे देखते थे बाबा, तुरंत उस आत्मा के तीनों कालों को जैसे जान जाते थे, और फिर बाबा बस उस बच्चे को मिल करके उसको जैसे पूरी संतुष्टि का, तृप्ति का अनुभव करा देते थे। तो मन जीते जगत जीत की, के ये एक और लक्षण है कि जिसने मन जीता होगा ना, वो तुरंत मन से एक सेकंड में देह से न्यारा हो जाएगा, एक सेकंड में देह में आके फिर वो पार्ट हो जाएगा। और क्या है मन जीते जगत जीत का लक्षण इसमें, उस दिन बाबा ने ना 18 जनवरी को रात्रि क्लास कराई, और रात्रि क्लास करा के, और जैसा मैंने बताया, हमें ना क्लास में ना जब 4-5 बार मिले बोलने की जरूरत पड़ी, लेकिन मन के भाव को जानकर बाबा ने तुरंत उसका समाधान कर दिया। और समाधान ही नहीं करा, बिल्कुल जैसे ऐसी स्थिति में मन को पहुंचा देना किसी को भी, जैसे हम यज्ञ में सुना करते थे, बस बाबा की तरफ कोई आता था यज्ञ के शुरू में जो हम लोगों ने सुना है, तो बाबा को देखते ही ना वो ध्यान में चला जाता था, कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को लक्ष्मी नारायण का, नई दुनिया का, स्वर्ग का साक्षात्कार। तो ऐसे ऐसे, तो अभी ऐसी स्थिति आनी है जब हम लोगों को भी, हम ही तो बाबा के हियर अपरेंट है, यानी कि बाबा साकार में तो अभी नहीं है, लेकिन हम एक एक से हरेक को बाप दादा का अनुभव होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए। वो दिव्य दृष्टि वाला नहीं, ऐसे वाइब्रेशन ऐसे सम्मुख आए। और वो देखा उस दिन भी 18 जनवरी को बाबा जब क्लास में आए, बाबा ने मुरली चलाई और एक बार भी उस दिन बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी। क्योंकि ये जो है ना परिस्थिति, शरीर रूपी परिस्थिति, इसके ऊपर योग बल ने कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी, और इस कारण से न तो एक बार भी खांसी आई बाबा को, न ही कोई गला साफ करने की जरूरत पड़ी। और वो इस बात का प्रतीक है कि अंतिम समय में जब हमारा भी अंतिम समय कर्मातीत स्थिति होगी, तो शरीर की कोई भी व्याधि होगी, कोई भी चीज हो, उस पर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। और जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, शरीर की कोई भी बात होगी, क्योंकि मन के अंदर कोई बात है, शरीर में अंदर कोई भी व्याधि, क्योंकि लास्ट पेपर हमारा ये शरीर का है, प्रकृति के तत्वों का पेपर। 18 जनवरी की मुरली आपने सुनी होगी, उसके बाद जब बाबा का 21 तारीख को संस्कार किया गया, यहां पर बड़ा आश्चर्य देखा बाबा के बॉडी में। बाबा क्लास मुरली चला के बस बाहर निकले और हिस्ट्री हॉल के बाहर, और बाहर तक आते आते भी बाबा 3-4 बार रुके, एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी। जितने थोड़े ही बैठे हुए थे, 30-40 होंगे, एक एक बच्चे को दृष्टि दी। फिर बाबा एक कदम चलते थे, फिर रुक जाते थे, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे बाबा, जैसे नैनों से पूरा निहाल कर रहे हैं। कल की मुरली में भी था ना संकल्प शक्ति का महत्व, तो कल की मुरली थी ना, तो जब संकल्प शक्ति हमारी पावरफुल इतनी हो जाती है, वो नैनों से ही जैसे रिफ्लेक्ट होती है, मन हमारा बिल्कुल स्टिल हो गया। और वो मन स्टिल लौकिक दुनिया में तो योगी की निशानी लोगों ने दे दी कि वो देह से ना बार बार आसन नहीं बदलेगा, देह स्टिल हो जाएगी, लेकिन ये बात मन की है। इस कारण से जब बिल्कुल ऐसी स्थिति बाबा उस दिन निकले और गए, बस दरवाजे तक आते आते बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। अब ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहे, जैसे हमें लोगों को भी एक एक हम में कौन है, भीष्म पितामह, अपने को वो समझे, क्योंकि भीष्म पितामह को भी जैसे मृत्यु उसका ना वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु का, ऐसे ही हम को आत्मा अगर ऐसे शरीर छोड़ दिया, जैसे दुनिया में अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, सुनामी आई, उससे अगर शरीर छोड़ दिया, क्या फर्क रहा, हमारे अंत मते सो गति तो होगी नहीं, क्योंकि अगर अंत में कोई कष्ट है, व्याधि है, चारों तरफ हाहाकार है, उस समय वातावरण ऐसा है, और ऐसे में अगर हमने शरीर छोड़ा, कोई विशेषता तो हम योगियों में रही नहीं। लेकिन ऐसा जैसे बाबा को पूरा आभास हो गया था, पेंडिंग वर्क पूरा एक दिन में निपटा लिए और बिल्कुल स्थिति में क्लास प्रीपोन्ड कर ली, क्लास में बच्चों को हर रीति से संतुष्ट कर लिया, और बाबा कह के अच्छा बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है, बाबा कह के गए। बस ये ही इच्छा मृत्यु का वरदान हम एक एक बच्चे को रहे, हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। और जब यही हमें प्राप्ति होगी, यही मन जीते जगत जीत का एक और ये पांचवा छठा लक्ष्य। क्यों? क्योंकि मन शरीर तो छोड़ना ही है, शरीर इस शरीर से तो स्वर्ग में जाना नहीं सतयुग में, लेकिन हम शरीर ऐसे छोड़े हैं, हाँ जैसे बाबा का लगा, बस बाबा ने छुट्टी ली और अंतिम जो आपने साक्ष्य वो सुना होगा ना, बाबा की स्थिति, लोगों ने पूछा कि बाबा आपको क्या अनुभव हुआ लास्ट में, तो बाबा ने बताया था वो सब नेट पर डाला हुआ है 13 दिन का पूरा कि बस एक तरफ तो ये शरीर का युद्ध, ये व्याधि, ये चल रही थी, दूसरी तरफ जैसे बाबा खींच रहा है और बस ये हो रहा था, हाँ बाबा मैं आपके पास आया कि आया, और बस ये स्थिति पूरे दिन भर की ये स्थिति थी, इसलिए मक्खन से बाल की तरह आत्मा खींच निकल के चली गई। और अंत मते सो गति, अगर उस क्षण में हम सबका पुरुषार्थ उसी एक क्षण के लिए हो रहा है जब हम शरीर छोड़ेंगे, अगर उस समय हमें कोई और संबंधी याद आ गए, पदार्थ याद आ गए, व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ, उसी जगह ही हमारा फिर पुनर्जन्म होगा, वहां हिसाब किताब चला निपटाना पड़ेगा। इस कारण से अंत मते सो गते के लिए ये जरूरी है जो बाबा कहता है बहुकाल का अभ्यास। अंत में अगर हम बन गए तो क्या हुआ, लेकिन जब तक बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा ये अशरीरी स्थिति का, अति हलचल में अति अचल रहने का, बहुत हलचल होगी। और बाबा ने बताया इतनी हलचल थी लेकिन मन जैसे मेरा अचल था और मैं बाबा के पास आ गया। पता कैसे चलेगा बाबा के पास, मैं तो यहां था, संदेशी दादी को दादी जी ने भेजा 2-3 बार कि वतन में जाओ और देख के आओ, वाकई बाबा चला गया, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाबा शरीर छोड़ के चला जाएगा। तब तो यही सोचते थे हम सब लोगों को इकट्ठा ही जाना है। तो बार बार वो संदेशी जाती थी और पहले तो 2-3 बार बाबा ने खींचा ही नहीं, और जब खींचा तो उसने बताया कि मैं वतन में गई और मैंने देखा 2 बाबा बैठे हुए हैं बगल बगल, और मैं सोचती रह गई कौन से शिव बाबा अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतनवासी, और कौन से साकार ब्रह्मा है। और इससे पहले जब भी मैं जाती थी, गुलजार दादी भी बताते थे, तो यहां के बाबा में और अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा में क्या फर्क दिखता था, लाइट का, तेज का, शक्ल सूरत वही थी लेकिन उनकी आभा में वो था, लेकिन जब बाबा संपूर्ण बन गए तो वैसा बिल्कुल। तो ऐसा ही हम बच्चों का भी, एक एक बच्चे का संपूर्ण अव्यक्त शरीर जो है सूक्ष्म वतन में, हम लोगों को भी उसी स्थिति को प्राप्त करना है जो ब्रह्मा बाबा ने करा। तो बीच बीच में हमें चेक करना चाहिए, एकदम ऐसी स्थिति में बैठ जाएं उस स्थिति का हमें आभास हो कि हाँ ये मेरे संपूर्ण स्वरूप है और मुझे ऐसा बनना है। अल्टीमेट बाबा सबसे विदा लेके कमरे में आए, कमरे में शरीर छोड़ दिया, और इसके बाद वंडर तो तब देखा जब बाबा शरीर 18 जनवरी को छोड़ा अर्ली नाइट में, लेकिन 18 की रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 का पूरा रात, 20 का सारा दिन, 20 का रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा में देखा कोई बाबा को इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, सिर्फ बर्फ थे, लेकिन बाबा का शरीर ऐसा चमक रहा था, चमकता हुआ, कोई भी दुर्गंध नहीं, ऐसा चमकता हुआ लगता था कि बाबा अभी उठ के बोलेगा हमेशा की तरह, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे। क्यों? क्योंकि बाबा के शरीर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी। आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है ना, तब शरीर अकड़ जाता है, ये नियम है, लेकिन बाबा ने 5 तत्वों पर भी इतनी विजय प्राप्त कर ली थी। जिसने मन जीता हुआ होगा वो प्रकृति जीत, जगत जीत में क्या आता है, जगत जीत में तो प्रकृति भी तो आ गई, 5 तत्व भी तो आ गए पूरे जगत के अंदर। तो इसलिए हमारा भी धीरे धीरे इस प्रकृति के 5 तत्वों के ऊपर ऐसी विजय हो जाए अंत में, बिल्कुल ये उसका उदाहरण है मन जीते प्रकृति जीत का। और ये देखने में आया, मैंने उसके बाद बहुत डॉक्टरों को भी पूछा बहुत लोगों को क्या ऐसा संभव है? कहते हमने तो अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं देखा और ऐसा हमारे विचार से तो संभव नहीं है। लेकिन जो प्रकृति जीत बना हुआ होगा, बाबा रोज प्रकृति के तत्वों को ज्ञान दान किया करते थे योग। और प्रकृति जीत बनने का सबसे बड़ा सहज उपाय क्या है? प्रकृति को हम अपना साथी बना ले, मित्र बना ले, क्योंकि मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है समय पर, उसका दुश्मन नहीं होता, उसके प्राण नहीं लेता। लेकिन बाबा ने तो बताया है कि ये पांच तत्व जो है ना, अति हलचल में आएंगे। अभी भी देखो कितने उत्तराखंड में कितनी बाढ़ आ गई, बादल फट गए, कितना अर्थक्वेक आता है, हजारों लोग मर जाते हैं, और अभी तो बहुत होना है। लेकिन हमारी मृत्यु प्रकृति के कारण ना हो, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के जाए, ये लक्ष्य हम बच्चों का होना चाहिए, तब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे। और ये कब होगा? जब ये प्रकृति के तत्वों का हमारे साथ अंत तक रहेगा। प्रकृति के एक एक तत्व को मित्र बना ले हैं। और मित्रता किनके बीच में होती है? जिनके समान जो होते हैं, जिनके संस्कार लगभग एक जैसे होते हैं, ऐसे ही धरती का संस्कार, जल का, अग्नि का, ये एक एक का संस्कार हमारे अंदर ऐसा हो जो उससे मेल खाए। मानो जल का संस्कार है, क्या संस्कार है जल का? शीतलता। वेरी गुड। और क्या सबसे बड़ा जल का संस्कार है? एडजस्टमेंट का। गिलास में लो, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा, थाली में लो, थाली में, चम्मच में लो, चम्मच। ऐसे ही हमारा संस्कार, ऐसे हम हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके चल सके। ये ना कहें कि इसके साथ तो बहुत सहज है, उसके साथ तो बहुत मुश्किल है। हर आत्मा के साथ हम इतने मोल्डिंग नेचर हो हमारी, हर परिस्थिति में हर आत्मा के साथ, तो क्या होगा? हमने ये जल का मुख्य संस्कार, और कई संस्कार है, मैं सिर्फ एक एक लूंगा, तो एक संस्कार अगर ये धारण कर लिया तो जल अंत समय में बहुत सुनामी आएगी, फ्लड आएगा, बादल फटेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जल को हमने अपना मित्र बना लिया। और बाबा ने कहा है कि मैं बच्चों की सेफ्टी के लिए बंधा हुआ हूं, बच्चों को उस समय वो टचिंग कराऊंगा जहां पर सेफ्टी होगी, उनके कदम ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। लेकिन बाबा तो सिग्नल भेजेगा, लेकिन ये रिसीवर भी तो प्रॉपर होना चाहिए ना। हाँ, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, बाबा टीवी का सेट हमारा खराब है और टीवी का प्रोग्राम बहुत अच्छा आ रहा है तो क्या करेंगे? रेडियो सेट नहीं होगा। तो टाइम टू टाइम हमें अपनी इसकी मैचिंग बाबा के साथ करनी चाहिए, देखना चाहिए, चेक। जैसे अकाउंट में ऑडिट होता है, अभी भी गुजरात का भी अकाउंट, हर एक का अकाउंट होता है ना, देखा जाता है, ऑडिट होता है, तो इसी तरह अपना ऑडिट हमें डेली करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, मंथली करना चाहिए और ईयरली करना चाहिए। अगर अपना ऑडिट नहीं हुआ ना, हमें लगेगा हम चल रहे हैं, सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी। इस कारण से ये बहुत गुण है, शीतलता जल का गुण है, आगे बढ़ते रहने का। जहां भी जल रुक जाएगा वहां क्या होगा? मक्खी, मच्छर, बदबू, वो सब पैदा। तो ये क्या है? ये हमारे अंदर के ही ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना आदि आदि, ये नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर अभी तक भी संकल्प रूप में भी आती है, समझना चाहिए ये मक्खी मच्छर ये पैदा, कहीं ना कहीं मेरा प्रभाव आगे बढ़ने का रुक गया है। एक एक तत्व को लीजिए, और सबसे ज्यादा हलचल तो धरती करने वाली है। धरती के द्वारा तो बहुत मृत्यु होनी है, भूकंप आने हैं, एट ए टाइम इतने ज्यादा आएंगे कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो धरती का कौन सा गुण हम धारण कर लें कि भूकंप से हमारी रक्षा हो जाए, सहन करने का, समाने का। और धरती का सबसे बड़ा गुण है दातापन का, धरती देती है। एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पानी है, पेट्रोल है, अनाज है, फल है, फूल है, हर चीज पृथ्वी देती है। इसलिए हम भी ना सदा दाता बन के रहे। बा हमारे सम्मुख जो भी आए खाली हाथ ना जाए। कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, हमारा सहयोग है, प्रेम है, शांति है, आनंद है, वो वाइब्रेशंस, वो हम सदा वाइब्रेट करते रहे। कोई भी आत्मा खा, इसमें तो खर्चा होता नहीं। कोई अन्न दो, कपड़ा दो, अनाज दो, उसकी तो लिमिटेशन है। और वो ही प्रयास आज तक हमारे यज्ञ में भी चला आ रहा है। कोई भी आता है ना, दादियों के पास से खाली हाथ नहीं जाता, मधुबन से कुछ भी छोटी मोटी गिफ्ट तो लेकर जाते ही है ना। लेकिन उस स्थूल चीज की बात नहीं, हमारी अपनी लिमिटेशन है। दाता बन के बस देते चले तो क्या होगा, धरती का ये मुख्य गुण अगर धारण कर लिया ना, तो धरती कभी भी हमारे दुख अशांति का कारण नहीं बन सकती। ऑटोमेटिकली हमें वो टचिंग होगी, इधर बढ़ो, इधर सेफ्टी है, उधर बढ़ जाएंगे। हमें तो कचबुच का भी याद है, लाटूर का भी याद है, भोपाल का भी याद है। जब भी कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा आई, भोपाल गैस ट्रेजेडी, बहनों ने बताया बस हम तो सब छोड़ के बाबा के कमरे में एक दो मिनट के लिए बैठे, अब बाबा ने टचिंग करा, वो ही हमने करा और हम सेफ्टी से बच गए। ये लेकिन उस समय टचिंग को भी ग्रास्प करने की वो चाहिए। जैसे वायरलेस होता है ना, वायरलेस तो फेल हो जाएगा, उस समय क्या काम करेगा, वॉइसलेस, निर्विकारी बुद्धि, वॉइसलेस कम्युनिकेशन जितना हमारा होगा बाबा से, बस उतना टचिंग होगी और बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह हम निकल के चले जाएंगे। परिस्थितियां हमारे वश में होगी हर चीज, लेकिन एक एक तत्व से हमें मित्रता करनी। रोज हम जाएं, घूमने तो जाते हैं मानो, लेकिन कहीं भी खड़े होके बैठ करके एक एक तत्व को योगदान करें, उस तत्व के गुण को स्मृति में लाए। इधर ही चले जाते हैं, हम तो जाते हैं कई स्थानों पर, पांचों तत्व दिखते हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। आकाश सब जगह है, पृथ्वी सब जगह है, वायु सब जगह है, जल और सूर्य की बात है अग्नि। बस एक एक तत्व को अगर हम रोज योगदान करेंगे, कुछ मिनट बैठ करके उनके साथ अपने गुणों को मैच करें, कोई कारण नहीं कि ये तत्व हमारे मृत्यु का कारण बन जाए और हम बस भीष्म पितामह की तरह शरीर छोड़ के आत्मा, क्योंकि सारा रिजल्ट उसी पर है। बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन अंत में अगर मानो बुद्धि इधर उधर भटक गई, क्या फायदा होगा, अंत मते सोगते हो जाएगी। लौकिक दुनिया में भी नौकरी करते हैं ना, तो जब आदमी रिटायर होता है, सारा लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है या ग्रेजुएटिटी या कुछ भी, किस आधार पर मिलती है, लास्ट पे ड्रॉन, लास्ट पे सर्टिफिकेट जो होता है ना, जितनी होती उसके आधार पर ही पूरा कैलकुलेशन। तो हमारा भी उसके आधार पर ही पूरा कि श्वास जब निकला और अंत समय जो स्थिति थी, उसके आधार पर ही आगे आने वाले जन्मों का सारे उसका पूरा नेक्स्ट हमारा क्या पुरुषार्थ है, उसके ऊपर पूरा का पूरा होगा। क्योंकि जन्म तो अगर विनाश से पहले गए जन्म तो होगा, जैसे दादी के वक्त क्या बताया था, मम्मा के वक्त क्या बताया, मुझे याद है मम्मा ने जब शरीर छोड़ा ना, थोड़ी हलचल हुई बाबा परिवार में, तो बाबा ने कहा देखो मम्मा कौन सी देवी मानी जाती है, लक्ष्मी, नहीं जब भविष्य में जाके तो लक्ष्मी बनेगी ना, अभी तो सरस्वती है। तो सरस्वती का पार्ट तो उसने बखूबी निभाया कि यहां पर ज्ञान दान किया, बहुत बाबा का कितना अच्छा, मामा की मुरलियां सुनो मंथन चलता था, लेकिन भविष्य में लक्ष्मी बनेगी उसका तो पार्ट निभाया नहीं, बजाया नहीं। तो अभी जो जन्म हुआ वो ऐसे परिवार में हुआ जिससे वो बहुत धन यज्ञ में दान कराने के लिए निमित्त बन रही है, तभी तो वो धन की देवी कही जाएगी और 2500 वर्ष तक लोग उससे धन मांगेंगे और धन खुटेगा नहीं। तो इस कारण से उसने शरीर का पूरा यज्ञ सेवा में लगा दिया, मन लगा दिया, तन लगा दिया, लेकिन धन तो नहीं लगाया। इसीलिए हर चीज की इम्पोर्टेंस है, ये नहीं कि धन कितना लगाया लेकिन कितने में से कितना लगाया। कोई गरीब है उस पे है ही नहीं। मैं देखता था बाबा के पास आते थे, माताएं आती थी, उस समय हरियाणा की भी 2-3 माताएं आई हुई थी उन समय में, बस धोती की और चुन्नी की गांठ खोली उसके अंदर से ना, चवन्नी निकाली, अठन्नी निकाली, बाबा बस मकान बना रहे हो, मेरी भी एक ईंट लगा देना। बाबा की आंखें भर आती थी प्यार, अरे बच्ची एक ईंट क्या, तुमने तो अपने लिए सोने हीरे जवाहरात सोने के महल रिजर्व कर लिए, वो मिलेंगे तुम्हें। कितने प्यार से बाबा उनका दिल रखने के लिए। और हमें याद है एक माता कुछ चावल लेकर के आई थोड़े से, बाबा इसको इसके खीर बना के खा, तो और थोड़ा सा चीनी ले आई, थोड़ा थोड़ा उसमें जो पड़ते है। तो बाबा ने भोली दादी को बुलाया, भाई कल जो बनाओ ना उसमें ये डालना, और सारे बच्चे पूरा यज्ञ जो है ना, अब उतने में से तो यज्ञ खा नहीं सकता था, उसका वो करके करा। और जब भोग लगाया गया तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो भोली दादी के ना वो हो, जैसे कि ना अन्नपूर्णा कहा जाता है ना, भोली दादी यज्ञ में थी जो भंडारी खाने की, उसको अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं, यज्ञ अन्नपूर्णा देवी के नाम से भक्ति मार्ग में जानी जाएगी। जिसके अंदर जो, तो जिस भावना से हम करते हैं वो भावना बाबा देखता था, किस भावना से। हमने सुना है, देखा तो नहीं, बिरला, जीडी बिरला, ओरिजिनल बिरला, वो आया, वो उसने बाबा के सामने ब्लैंक चेक रख दिया बिल्कुल, और बाबा मैंने सुना है आप भगवान का दीदार कराते हो, आपके पास जो आता है वो ध्यान में चला जाता है, तो मुझे भी लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार करा दो बाबा। और बहुत मंदिर बनाए हैं, सब जानते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर। तो बाबा ने कहा, देखो मेरे पास तो कुछ वो शक्ति है नहीं, ये तो शिव बाबा के पास शक्ति है, अगर तुम्हारे दिल होगी बाबा कराना चाहेगा करा देगा, लेकिन मैं तो नहीं करा सकता, मेरे हाथ में तो है नहीं है। और बस बैठा था तभी एक माता आई, बहुत गांव की सी माता, बिल्कुल साधारण कपड़े, बस बाबा मैं ये लाई हूं। और बात करते करते वो ध्यान में चली गई, और वो एकदम साधारण सी माता, एकदम बाबा के रूप में, तो बाबा को तो देखे नहीं, वो तो कृष्ण को देखे, और कृष्ण को गोदी में लेने के लिए जैसे लालायित हो। तो कहां बिल्कुल साधारण से साधारण को भी बाबा ने दीदार करा दिया, और जिसने ब्लैंक चेक रखा उसको साक्षात्कार नहीं मिला। तो बाबा इस चीज का वो नहीं है कि भाई कौन मतलब धन से वो करता है, बल्कि किस किस भावना से वो करता है। तो धरती का और जल का समझा, वायु बहुत अंत में साइक्लोन चलेंगे 100 की स्पीड से, 150 की स्पीड से, लेकिन वो साइक्लोन हमारी मृत्यु का कारण ना बने, उसके लिए वायु का कौन सा गुण धारण करना है, कौन सा विशेष गुण होता है वायु में है? एक तो वायु हल्की होती है, दूसरा वायु प्राण वायु है। वायु नहीं होगी तो हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो जीवन भी वायु के कारण है। ऐसे ब्राह्मण जीवन में ना अगर खुशी उमंग उल्लास नहीं है, ये ब्राह्मण जीवन का प्राण है उमंग उल्लास। इसीलिए हमारा उमंग उल्लास कभी भी कम न हो, हम सदा हल्के रहें, कोई भी पेपर आए वो हमें भारी न करे। तो ये गुण अगर हमने धारण किया होगा तो वायु कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, हमें सदा सहयोग देगी, और सदा सहयोग देके हमें उड़ा के जैसे वहां ले जाएगी जहां सेफ्टी होगी। इसी तरह आकाश का सबसे बड़ा गुण क्या है? विशालता। हमारे हृदय में आकाश जैसी विशालता, किसी की कमी कमजोरी को हम अंदर धारण न करें, बल्कि विशालता का प्रतीक जो महान आत्माएं होती हैं, उनमें सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? क्षमा का गुण। ये क्षमा का गुण ना हम तब धारण कर सकेंगे जब हमारे में भूलने की शक्ति होगी। जब मनुष्य पैदा होता है तो दो शक्तियां हरेक के पास होती हैं, एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। लेकिन विडंबना क्या है, ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज कि जो बात वो भूलना चाहता है वो तो जिंदगी भर याद रहती है, और जो याद रखना चाहता है वो भूल जाती है। मुरली याद रखना चाहते हैं, देखो भूल जाती है कि नहीं, बाबा की याद भी भूल जाती है कि नहीं, लेकिन किसी ने अगर कोई अपमान कर दिया, कोई गाली दी, वो याद रहती है। अच्छा मैं भी वक्त पर समय पर इसे दिखा दूंगा मैं कौन। तो ये जीवन की विडंबना है। तो भूलने की शक्ति हम सही जगह, सही स्थान पर, सही समय इस्तेमाल कर सके, इसके लिए बुद्धि की कुशाग्रता बहुत जरूरी है। और वो तब होगा आकाश जैसी विशालता हो, बस किसी ने अगर कुछ बात भी करी, अपमान भी कर दिया, कोई ऐसी बात हुई, उसको भूल करके हमारा व्यवहार उसके साथ फिर से दिव्य और अलौकिक हो जाए। तो ये है आकाश जैसी विशालता। और ये अगर हमारी आकाश जैसी विशालता हमने धारण कर ली ना, तो अंत समय आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी व्याधि होंगी, बम, मिसाइल, रॉकेट, बादल, क्लाउड बर्स्ट, आकाश मार्ग की जितनी प्रॉब्लम है, वो हमें कभी मृत्यु का कारण हमारे नहीं बन सकती, क्योंकि पहले से ही टचिंग हो जाएगी और हम बच करके निकल जाएंगे। और अंतिम कौन सा है तत्व? अग्नि। अग्नि का स्वरूप क्या है? सूर्य। अग्नि में कौन सी विशेषता होती है? जलाने के रूप बदलने की। कोई भी चीज अग्नि में डालो उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा है, आप बच्चों का भी ना ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप। ज्वालामुखी की कहानी जानते हैं? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वो मंदिर है, वहां ज्वाला देवी का मंदिर बोलते हैं, है ना? उसके ओरिजिनल में तो वो मूर्ति एक देवी की थी, उसके मुंह से आग निकलती रहती थी। तो मैं पहले ओएनजीसी में था, ओएनजीसी नाम सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल, जिसका काम है जमीन से गैस निकालने। तो हम लोगों ने भी सुना है, हम लोगों से पहले की बात है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वे कर रहे थे ओएनजीसी के लोग, तो वहां पर भी गए और वहां देखा ज्वाला जी, ज्वाला लगातार निकल रही है, लोगों की बड़ी भावना है, श्रद्धा है। तो वहां जाके हमारे लोगों ने देखा कि अरे भाई, ये तो और कोई बात नहीं, ये तो कोई गैस नीचे से निकल रही है। और जहां गैस की बात आती है, वो सर्वे किया उन्होंने और लोगों को बोला, तो लोगों ने कहा है तुम हमारी देवी का अपमान कर रहे हो, और उनको थोड़ा मारा पीटा। बड़े ऑफिसरों तक बात पहुंची, वो लोग भी आए, उन्होंने कहा भाई देखो ये गैस होती है, और आप में से जो मुख्य है वो आए, हम गैस को ना, ये गैस यहां तक जमीन से आ रही है, उसके बीच में एक वाल्व लगा देते हैं। वाल्व लगाया, अब आपका ही जो पटवारी है या जो पंचायत का प्रमुख है वो सब आए अपने हाथ से, क्योंकि उन्होंने ये चैलेंज रख दिया, हम तो 100 साल से देख रहे हैं, 200 साल से इसके मुंह से कभी आग निकलनी बंद ही नहीं हुई, आप बंद करके दिखाओ। तो उनको कहा कि आप खुद ही कर दोगे, ये वाल्व लगा दिया, ऐसे वाल्व बंद कर दिया, वो गैस बंद हो गई, कुकिंग गैस बंद हो जाती है जैसे, बुझ गई। फिर उन्होंने कहा कि आप खोलो, वो खोला और फिर माचिस थोड़ा दिखा दी, फिर गैस जलने लगी। तो ज्वालामुखी स्वरूप। तो भाव क्या है? हमारी भी याद की कंटिन्यूटी हो। जितनी याद की कंटिन्यूटी होगी ना, एक सेकंड को भी अगर याद की कंटिन्यूटी बंद हुई तो वो नहीं होगा। इसीलिए अग्नि स्वरूप जितना होगा और अग्नि में क्या होता है, वही रूप बदल जाता है हर चीज का। हमारे सम्मुख लोग आएंगे, अंत में ये पाठ चलना है, गौर से सुनो कि जब प्रत्यक्षता होगी चारों तरफ दुख होगा, हाहाकार होगा, अशांति होगी, तो बाबा ने कहा है आपके सम्मुख लोग आएंगे, रोते 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 आए, आपका स्वरूप देख के, अग्नि स्वरूप देख के उनका रूप बदल जाएगा, रोते हुए आएंगे, हंसते हुए चले जाएंगे। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, और दुखी आत्मा, सब तरफ से तृप्त आत्मा आए, तप्त होगी, दुखी होगी, ये दुख धन का, तन का, मन का, बहुत दुख होंगे, लेकिन आपके सम्मुख आते ही, क्योंकि हमारा ज्वालामुखी योग का स्वरूप है, अग्नि का स्वरूप, तो आए बस दुख की सब बातें भूल के सुख स्वरूप होके आत्मा चली जाए, वो तो उसका ओरिजिनल स्वरूप है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा योग है, तो रोज भी हम सूर्य के सम्मुख, वायु के सम्मुख, जल के सम्मुख, आकाश के सम्मुख और पृथ्वी के, एक एक मिनट, दो दो मिनट उन पर ध्यान लगा के उनको योगदान करें। हे धरती माता, आप तो माता हो, आओ मैं आपका भी सहनशीलता का, दातापन का गुण धारण कर रहा हूं, आओ आप, मैं आपके साथ आपके हाथ मिला के चलता। इस तरीके से पांच तत्वों को भी रोज दान करेंगे तो देखेंगे कि हम किस प्रकार से प्रकृति जीत भी बनते चले जा रहे हैं, और ये शरीर भी तो प्रकृति है, इसको भी जीत लेंगे। ठीक है, तो अंत में लक्ष्य यही रखो, माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत। ओके, ओम शांति, ओम शांति।
ब्रह्मा बाप की अंतिम कर्मातीत स्थिति और हम सभी की अपनी वर्तमान स्थिति, दोनों का बहुत ही सुंदर, मेरे को तो लग रहा था कि हम अच्छी तरह कंपेयर कर सकते थे कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है। तो क्या है मन जीते जगत जीत स्थिति, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन भाई जी ने हम सबके सामने रखा है। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
ओम शांति।
अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, प्रकृति के तत्वों को भी सकाश देंगे। ओम शांति।
यही मन में बा...